हंसरा है और बेचार बन और थोड़ी खीर खाई। हमारा उपाय नहीं, तुम मरोगे, हमारे हाथ में तुम्हारी दवाई दे, हम भी तुम बदनाम हो, तुम्हारे को दवाई दे, तुम तो मरोगे, तो आगे तो मैं मरेगा मरेगा वो 80-60 से मरेगा, तो उसको सुख से मिल जाए क्षण मात्र और दुख की कोई सीमा नहीं, आगे में प्राणों का नाश हो गया। इसी प्रकार से एक भाई कोई नहीं अपने समझो कि स्त्री के वहां बड़ी प्रीति है, स्त्री के साथ में सहवास किया, वो जता होती है क्योंकि गृहिणी के रोग के मां असली सहवास जो है वो एक प्रकार से साथ साथ मृत्यु के तुल है तो हम लोगों के लिए भी विराट के नीचे मां कालस्थानाओं का एक अच्छा अंग्रेज सदृष्टि वाला हुआ, उसने कहा कि असली सहवास करने ही और यदि करना अपने एक संतान उत्पन्न करना तो समझो कि सारी आयु में एक जगह इसका दीदी अमोघ हो जाता है, संतान जरूर पैदा होगी और अधिक करो तो साल में एक बार करना, इससे अधिक नहीं करना, और इससे अधिक करने की इच्छा हो तो कफन और काढ़ बना करके रखना। ये 40 साल के बचना हमारे नहीं, हमारे शास्त्रों में तो इसमें और थोड़ी छूट देगी कि महीने में एक दफा कर ऋतु काढ़ ऐसा करने वाला गृहस्थी है वो भी एक प्रकार से कोई जटिल है, जटिल के समान है, ब्रह्मचारी के समान है। तो आप थोड़ा विचार करके देखो, स्त्री के साथ सहवास करने से सुख होता है कितने काल तक, उसके लिए कि आधा दिन तो एक दिन शरीर की कैसे दशा, ये शरीर का समझो तेज है उसके नाश से की बड़ का नाश होता है, बुद्धि का नाश होता है, तेज का नाश होता है, आयु का नाश होता है, समझो कि इस लोक का नाश होता है, परलोक का नाश होता है, मर करके घोर नरक में जाता है जो अनिति को विषय भोग करता है। सुख होता है एक मिनट का, उनको एक समझो कि एक मिनट का दुख कर दी सीमा नहीं, समझो कि बरसों की सीमा नहीं, दुख की सीमा नहीं, तो प्रणाम उसका नाम है नतीजा के आर्म के बीच के मैं तो सुख है और नतीजा उसका होता है। यह राशि सुख जो राशि पुरुष हैं विषय पुरुष हैं उनकी दृष्टि में सुख है, वास्तव में सुख नहीं। भगवान ने गीता में बताया कि आर्म के मैं तो अमृत के समान और अंत के बीच के वहां विष के समान, ये इंद्रियों और विषयों के समझ से होने वाला जो सुख जो भोग है वो एक प्रकार से राशि है, इसकी ये दशा बतलाई। और गीता के बीच के वहां भी उस विवेकी के वास्ते ऐसी बात बतलाई है, ये तो आपके प्रणाम की बात थी, प्रणाम ताप, ताप क्या संताप, संताप माने तीन से जो एक प्रकार से दुख होता है ना संताप पश्चाताप, ये संताप के अंतर्गत जैसे आपके इस साल के मत कितने रुपए बढ़े बोले 10,000 और आपके बराबर में जो दुकान है उसके बोले उसके 20,000, तो अपने 10,000 उसके 20,000 वो अपने बर्दाश्त, तो अपने 5 हो किंतु उसके 4 हो, दूसरे की उन्नति को देकर के जो जल पैदा होती है उसका नाम है ईर्षा से जो पैदा हुआ, एक प्रकार से वो अपने ये संसार का जो सुख है हमारा बड़ा मान हुआ, समझो कि खूब प्रतिष्ठा हुई किंतु हमारे से बढ़ करके एक दूसरे महात्मा की हो गई तो हम तो वहीं जड़ बने। हमको ये कहा कि भाई हमारी प्रतिष्ठा तो मत हो किंतु उसकी नहीं होनी चाहिए, एक प्रकार से ताप दुख है, तो ये सुख भी दुख देने वाला है। इसलिए जो सुख है एक तो इसमें यह बात दिख रही कि प्रणाम से मैं दुख देने वाला और एक संताप से दुख देने वाला और अरे संस्कार के द्वारा, संस्कार कैसे कि जैसे ये पाकिस्तानी जो भाई लोग हमारे आए हैं यहां से निकाल दिए गए और यहां इनको रहने के लिए जगह नहीं, खाने के लिए रोटी नहीं, मारे मारे बेचारे सुनते हैं, दुखी हो रहे हैं, बहुतों से मुलाकात हुई भोसे को बंगाल से आपने पूर्व बंगाल से निकाले गए और भोसे सिंह जो की आपने पश्चिम पंजाब से निकाले गए। ये दिल्ली आदि में पड़े हैं, ये कलकत्ता आदि में, ऐसे ही और जगह से पड़े हैं। हमारी मुलाकात भी भूतों से हुआ करती है, वो आकर के रोते हमारे पास कि हमारे सिंह मटर गाड़ी चलती थी, हमारे ऐसे दुकान चलती थी, भोज के गुमाते थे, आज हम भीख मांगने के पास, भीख मांगने के लिए आपके पास। उन बातों को याद करते हैं कि हम ऐसे धनी थे, हमारे पास के मां एक प्रकार से ऐसे ऐसे चाकर थे, ऐसे ऐसे आराम करते थे, उस पहले भोगे हुए सुख को वह याद करते हैं, रोते हैं, तो उनके संस्कार उनके हृदय के मन में है, तो ये संस्कार से होने वाले दुख की बात है, तो उनको सुख तो कभी हुआ था, किंतु वो सुख अब उसको दुख दे रहा है, वो सुख उनको दुख दे रहा है, याद करते हैं, रोते हैं। पर गुणवृत्ति विरोधास्त्र, गुणवृत्ति विरोधास्त्र क्या, आप सत्संग कर रहे हो, आप चाहते हैं कि हम सुने, और साथ के में सत्संग की जो आपकी इच्छा है वो सात्विक है, और आपको जो नींद आती है वो तांत्रिक है। आप नहीं चाहते कि हमारे को नींद आवे, किंतु जबरदस्ती नींद आती है, तो आपको चाहते हैं कि नींद ना आए, और नींद बलात्कार से आती है, क्योंकि तमोगुण जो है उसके कारण से तो नींद आती है, और सतोगुण है उसके कारण से आप चाहते हैं कि नींद न आए, तो दोनों का विरोध होता है, लड़ाई होती है, तो आपको दुख होता है, झगड़ा होता है आपके हृदय में। इसी प्रकार से सत्य रज तम ये तीन गुण है, उनके परस्पर में जो लड़ाई होती है उसे झगड़े से आपको दुख होता है। आप किसी के 5,000 रुपया मांगते हैं और वो देता नहीं है, रुपये उसके पास राखे, किंतु आपके जो मुख्य आपने नाश कर दिया, आज कभी आपने वकील किया, वकील आपको पूछ रहा है तुम साहब इसका प्रमाण बोले हमारा भाई खत भाई कहता तो ठीक है, किंतु कोई गवाह कोई नहीं, कोई साहती लिखत है बोले नहीं, तो साहब सरकार तो प्रमाण मांगे, इसलिए आपका सही मैं जानता हूं, आपका भाई खाता सच्चा, किंतु इसके लिए आपको झूठे 2 गवाह कम से कम खड़े करने पड़ेंगे, चाहे आपकी दुकान के नौकर हो, उस वक्त में आप रुपया दिया ना, उस वक्त में आपका मुनीम गुमाशा ये भी कोई खाता बोले ऐसा खाते नहीं, तो बोले अब उसको झूठा बने झूठा खड़ा, नहीं तो तुम्हारा मुकदमा खार हो जाएगा, उसके हाथी को लिख है बोले नहीं, बोले झूठी को लिख के जाओ शादी से बना ले, तो पहले वैसा सही हो, ये काम तो हमारे लिए बहुत ही खतरे का है, तुम्हारा रुपया दूंगा, तो और लिए तो 2 गवाह खड़ा, अब 2 गवाह झूठा खड़ा कर लिया, अब उसके मन के बीच के वहां समझे अच्छा पुरुष था सात्विक पुरुष था, उसने बोला रहे कि क्या उपाय करें, एक बार तो यह पाप कर ले और फिर कभी बिना अपना पक्का बंदे उसके बिना रुपया दे ही नहीं, और अब दे दिया इसके लिए क्या उपाय है, तो राशि जो वित्तीय लोग की वृत्ति वो तो उसे पाप कराने के वास्ते सम्मति देती है कि कर लो पाप, और वो सत्संग के भजन के प्रभाव से जिसके अंतर्गत जो सिद्ध हुआ है वो सात्विक रूप से कहती है कि चाहे 5,000 रुपया दे दिया अपने झूठा गवाह को नहीं कर, अब दोनों का युद्ध होता है, मन ये देने की नहीं दे, वकील से मिलते हैं तो ये सुना देता है कि क्या सब कोई करते हैं, आज अब बंदो कहना ये 5,000 रुपया तुम क्यों छोड़ते मूर्ग, ये लोग जो सत्संग में जाता है कुछ कहते हैं इस प्रकार से जो जीता गया देंगे तो पाप लगता है कि नहीं, रुपया हमारा सत्ता पाप की बात तो है, तुम्हारे को लोग प्रिय हो, तुम्हारे को रुपया प्रिय हो तुम तो झूठ बोलोगे, और धर्म प्रिय हो तो इसका तुम क्या, दोनों बातों में एक रह सकते दोनों ही रहते, तब उसके चुटके बीच के ना संग्रह विकल्प होता है और लड़ाई होती है, ये करो ये करो ये करो ये, तो ये बताया गया कि विवेकी की दृष्टि के ना जो विवेक से उनकी दृष्टि के ना तो सुख है वो भी दुख है, दुख सर्वण विवेकी ना विवेकी में सर्वण दुख है, विवेकी के लिए सभी दुख है, सुख भी दुख दुख से दुख है, ये कहा कि ये जिनको आप सुख समझते हैं इसको विवेकी नहीं समझते, और ग्रस्त भी नहीं समझ, ग्रस्त की दृष्टि ग्रस्त पुरुष जो है ये इतने उच्च कोटि के पुरुष हैं कि उनका हम ध्यान करें तो समझे हमारा मन भगवान में व्यस्त। ये मंगलनाथ जी महाराज जी जिनकी छोटी है 1956 के साल में शुरू में हमने उनके 10 रुपये थे जिसको आज 47 वर्ष हो गए। 10 करने से उनकी जो मुद्रा देखने से उनकी स्थिति देखने से हम जिनके बीच में बैराग उत्पन्न होकर के और ऐसी उपति होने लगी बोले हो संसार में पुरुष तो यही है अपने भी इसी प्रकार बनना चाहिए। जब जब वो याद आते तो उसे याद करने से उसकी समृति से चित्त के वहां बैराग उत्पन्न होने लगता। अब जिनके बैराग है उनके तो बात ही क्या, हमारे दसवीं शास्त्र में लिख रहा है तो अद्वित राग विष्णुवा चित्तम कि तुम्हारे तुम्हारा चित्त स्थिर नहीं है तो ये भी एक उपाय है क्या कि द्वित राग विष्णुवा चित्तम चित्तम द्वित राग विष्णु चित्त का विशेषण है कि द्वित राग विष्णु तो द्वित राग पुरुष जिसके चित्त का विषय है तो द्वित राग पुरुष जिसके चित्त का विषय क्या मतलब कि द्वित राग पुरुषों को समर्पण करने से चित्त काम का समर्पण करना चिंतन करना तो चिंतन करने से भी एकाग्र हो जाए। द्वित राग पुरुषों का ध्यान करने से चित्त एकाग्र हो जाए तो आप ख्याल करो कि बैराग की कितनी इज्जत है। गीता में भी आप देखो विवेकी के लिए सब दुख ही है जो बात कही यह दिखलाया जाता है कि विवेकी की दृष्टि में वो सुख सुख नहीं है। ये संस्पर्श जाप होगा और दुख ये में एवते आदंत अंत को अंतो है न तो शिविर अंतो बुध बुध माने विवेकी और मूल माने अविवेकी ऐसे विशेषण विषयों के ना जो विवेकी है तो नहीं बन संस्पर्शा क्या इंद्रियों और विषय इनका जो संयोग है इसका नाम है संस्पर्श सर्वस्पर्श रूपरस दंत। ये पांच जो विषय और पांच इंद्रियां विषयों के साथ में इंद्रियों का जो संबंध है सहयोग है इस दोनों के सहयोग से जो उत्पन्न है भोग सुख उसको कहते हैं संस्पर्श जा भोगा। भोग कहते हैं कि इंद्रियों और विषयों के संबंध से उत्पन्न होने वाले जिसको हम राशि से कहते हैं इसके लिए भगवान क्या कहते हैं दुख एवं एवते ये दुख का ही स्वरूप है। तुम जिसको सुख मानते हो है ये दुख ही दुख कई हेतु है वही हेतु का मतलब परिणाम इनका नतीजा से दुख ही है दुख ही देने वाले हैं। और कैसे आदंत अंत कौन से है हे कौन से ये सब के सब आदि और अंत वाले हैं उत्पत्ति विनाशशील है ऐसा समझ करके विवेकी जो है दुख जो है विवेकी जो इसके में नहीं बनती तो क्यों बनते हैं अविवेकी अविवेक कौन है कि मूर्ख तो रमण करने वालों को मूर्ख बस रहा है ये भी रामायण के मांगे थे नरत में पाए विषय मन दे पलक सुदाते साथ दिस ले मनुष्य शरीर को पा करके और विष्णु के में जो मन लगाता है वह कैसा कि वो सच मन मूर्ख मूर्ख क्यों कि अमृत के बदले में विष को देता है। अमृत क्या है अमृत परमात्मा है मुक्ति का नाम अमृत है और ज्ञान है वो अमृत है और ज्ञान के जितने साधन है वो सब अमृत है यानी परमात्मा परमात्मा संग अमृत इस वास्ते उसकी प्राप्ति के जितने साधन है वो अमृत है उसको ठुकरा करके के और विषय भोगने के बीच में जो रमता है तो वो ऐसे मूर्ख है। और एक बात आपको बता दिया कि खूब ध्यान देकर के सुनना कि बिना बैराग के बिना आसक्ति रहते हुए मुक्ति हो नहीं सकती ज्ञान योग के बीच के माँ कर्म योग में, भक्ति योग में, अष्टांग योग में किसी में आप चाल करके देखो कि बिना वैराग के बिना तुम जो की इसकी आत्मा का सुधार और उधार किसी हालत में नहीं हो सकता। प्रमाण कैसे आप सब शास्त्र में ध्यान देते थे, जो खाली हमारी बात से नहीं, बिना वैराग के बिना अष्टांग योग की सिद्धि नहीं हो सकती, बिना वैराग के बिना ईश्वर की भक्ति की सिद्धि नहीं हो सकती, बिना वैराग के बिना कर्मयोग की सिद्धि नहीं हो सकती, बिना वैराग के बिना ज्ञान योग की सिद्धि नहीं हो सकती। अब आपको गीता में बताया जाता है कि कर्मयोगी जो है उसकी उत्तम से उत्तम जो निष्ठा बताई गई है उसके लिए आप सत्य ज्ञाता चौथा श्लोक देखो, यदा ही इंद्रिया सेतु में कर्म से निसज्जते सर्व संकल्प संन्यासी योगारूढ़ सदस्यते। यदा ही माने जिस काल के माँ इंद्रियों के अर्थों के बीच के माँ इंद्रियों के भोगों के माँ जब ये आसक्त नहीं होता है, कर्म में आसक्त नहीं होता है, तब सारे संकल्पों का त्यागी योगारूढ़ कहलाता है। नहीं तो नहीं तो जैसा आप जैसा ही मैं जैसा ही नहीं चाहिए। और कर्मयोग के साधन से परमात्मा की प्राप्ति हो जाती, किंतु कर्म योग जो है उसमें प्रधान क्या, प्रधान प्रधान है आसक्ति का त्याग, आसक्ति कहो राग को उसका त्याग, फिर ख्याल करो तीसरे अध्याय का 19 क्या सुनो कि तस्मात सत्य सततम और कार्यम कर्म समाचर असत्य आचरण कर्म परमात्मनोति पुरुष अर्जुन तू जो है अनासक्त होकर के आसक्ति कर हरित होकर के समस्त प्रकार से कर्मों का आचरण कर, शास्त्र भूत कर्मों का आचरण कर, क्योंकि शास्त्र भूत आचरण करता हुआ पुरुष अनासक्त भाव से कर्म को करता हुआ पुरुष परम जो परमात्मा उसको प्राप्त हो जाता है। योगी लोग जो है समझो कि अंतकर्म की सिद्धि के लिए निष्काम कर्म करते हैं तो उनको वहां आसक्ति के त्याग की बात बताई जाती है। क्या बताया, कायन मनसा बुद्धिया प्रकेल इंद्रियती और योगी में कर्म कुर्वंती और संयम तत्वात्म शुद्धे। काया करके, मन करके, वाणी करके, शरीर करके, इंद्रियों करके, केवल इंद्रियों करके आत्मा की शुद्धि के लिए आसक्ति को त्याग करके योगी लोग कर्म करते हैं। तो सब जो वही बात कही देख ले, इसी का नाम कर्म योग। योग सकुरु कर्मणि संयम तत्या धनंजय और सिद्ध सिद्ध समो भूत्वा समतम योग उच्यते। इन्हें क्या कहा, ये कहा कि योग के मस्तित होकर के और आसक्ति पर हरित होकर के आसक्ति का त्याग कर करके हे अर्जुन तुम कर्मों का आचरण कर और कर्मों के में सिद्धि और असिद्धि को जो समभाव है इसी का नाम योग है। और योग जो है वो कर्मों के मां कुशलता है, तो इसको योग बताया। ये क्या कर्म ही है, तो बोले वहां कर्मण्येवाधिकार से मां फले सुकराचर, वहां तो फल का त्याग बताया, आसक्ति का त्याग नहीं बताया। बोले थोड़ा और बढ़ो, कर्मण्येवाधिकार से मां फले सुकराचर, मां कर्म फल होती हूर मां तो सुमृत कर्मण। मतलब इसका यह मतलब है कि अर्जुन तेरा कर्म करने में अधिकार है और उसका उसके फल में नहीं, और कर्म के फल का तू हेतु नहीं मत बन। तेरी जब उसके में आसक्ति हो जाएगी तो वो कर्म के फल में हेतु बन करके और तुम्हारे कर्म योग को नष्ट कर दे, और कर्म के न करने में भी तुम्हारी प्रवृत्ति में तो इसलिए यह बात सिद्ध हो जाती है कि बिना आसक्ति के त्याग के बिना कर्म योग की सिद्धि नहीं होती। भक्ति योग की बात ये भगवान गीता की 15वीं अध्याय के में भक्ति के प्रकरण को आरंभ करने के लिए संसार रूपी वृक्ष एक प्रकार से रूपक बना के कहते हैं उपदेश देने के समय गीता की 15वीं अध्याय के 30वें श्लोक में अश्वत्थमेन सुविरूढ मूल मसंग सस्य दृढ़ न चित्वा तथा पदं तत् परिमार्जितव्यं यस्मिन् गता न निवृत्तं कुरुः तमेव तादं पुरुषम प्रबद्ध यथो प्रवृत्ति पृथिता पुराणी। क्या मतलब है? देखो ध्यान देकर, ये संसार रूपी जो वृक्ष है, इस संसार रूपी वृक्ष को असही शस्त्र कहते, सही नाम राग और असही नाम वैराग, तो वैराग रूपी शस्त्र। और वैराग भी कैसा? दृढ़ वैराग। ऐसे दृढ़ वैराग रूपी शस्त्र के द्वारा इस वृक्ष को तुम काट डालो, क्योंकि वैराग रूपी शस्त्र से ही वृक्ष ऐसे संसार में चढ़ता है। काटना क्या है? कि इसको मिटा देना, इसको भुला देना, संकल्प रहित हो जाना, जिसको हम परम उपरती कहते हैं, वो इसका काटना है। और इसके बाद, जिसके बाद भक्ति करो, पहले तुम्हारी भक्ति सिद्ध नहीं होगी। तथा पदम तब परिमार्ग तब बन, उसके बाद में उस पद का अन्वेषण करना चाहिए, उसकी खोज करनी चाहिए, उस पद की, कि जहां जाकर के फिर लौट कर वापिस इस दुख रूप संसार के ना, दुख का आलय, दुख का जो घर है संसार, इसमें वापिस न आना पड़े। तथा पदम तत्मार्ग तजन और यस्मिन गता न निवर्तन्ति भूयः, जिसको जाकर के फिर भूयः वापिस यहाँ नहीं आना पड़े, उसका अन्वेषण करो। उसका उपाय, उपाय कहते हैं तमेव ताजं पुरुषं प्रपद्ये, उस आदि पुरुष की मैं शरण हूँ, उस परमात्मा की मैं शरण हूँ। ये जो शरणागत का जो भाव है, इस भाव से की उसकी शरणागत होकर के उसका अन्वेषण करो। पूर्ण पुरुष के जो प्रवृत्ति प्रसिद्धता पुराणी, जिस परमात्मा से यह संसार उत्पन्न हुई और विस्तार को प्राप्त हुई, इस परमात्मा, ये करने से क्या होगा? ये करने से तुम्हारे सारे दोष मिट जाएंगे और तुम्हारे को परम पद की प्राप्ति हो जाएगी। निर्माण मोगा जब संग दोषा अध्यात्म नित्यावृत कामा गंजिर विमुक्ता सुख दुख संग गच्छं च मूढ़ा पद्मभ्यंता। तो ऐसे पुरुष जो उसे अविनाशी पद को प्राप्त होते हैं, कैसे? कि जिनके मां मान और मोह नहीं है। मान माने मान प्रसिद्ध चीज है, मान बढ़ाई प्रतिष्ठा का अतंत जिनके मां अभाव हो गया है, माने वो नहीं चाहता है प्रसा निर्माण। और वो माने ज्ञान, मान करके रहित और मोह करके रहित, उसको कहते हैं निर्माण मोहा। और जित संग दोषा, कि जिसने आसक्ति के दोष को जीत लिया वैराग रूपी शस्त्र के द्वारा, माने वैराग जो है कोई आसक्ति को अभाव है, तो जिसने आसक्ति के दोष को जीत लिया, तो कहते हैं जित संग दोषा, जिसमें आसक्ति नहीं। और अध्यात्म नित्या, नित भगवान के ध्यान के में मस्त है, और विनिवृत कामार, अच्छी प्रकार से जिसकी सारी कामना निवृत्त हो गई है, उसमें कई प्रकार की इच्छा कामना नहीं रही। और द्वंद्व विमुक्ता, द्वंद्व से विमुक्त, द्वंद्व क्या? राग द्वेष हर्ष शोक सुख दुख अनुकूलता प्रतिकूलता, ये सब द्वंद्व है। इससे विमुक्ता माने एकदम छुटा हुआ, उनकी सुख दुख संज्ञा, सुख दुख जिनकी संज्ञा है, नाम है, ऐसे द्वंद्व से रहित गच्छन्ति अमूढ़ा, ये मोह भाव से रहित ज्ञानी महात्मा पुरुष उस पद को प्राप्त होते हैं, कि जहाँ जाकर के लौट करके वापस नहीं आता, वो परम पद जिसको मिलता है। कि न तद्भासे ते सूर्यो न शशांको न पावके, जब गतवा न निवर्तन्ते तद धाम परम में, माने जिसको न सूर्य प्रकाशकता, न चंद्रमा प्रकाशकता, न अग्नि प्रकाशकता, और जहाँ जाकर के वापस नहीं लौटता है, वो मेरा परम धाम है। उसका नाम ही परम धाम, उसी को कहते हैं परम पद, उसी को कहते हैं ब्रह्म का स्वरूप, और उसी को कहते हैं परम गति, उसी का नाम है परम शांति, अनेक नाम उनके है। इससे यह बात सिद्ध हुई कि भक्ति जो है, शरणागति जो है, वो भी बिना वैराग के बिना नहीं है। बोले आप शरणागति की बात को खास भक्ति की को, खास भक्ति में गीता की ग्यारहवीं अध्याय के अंत के दो श्लोक देखो, कि भक्ता तुम अन्य आसक्त है अहमे रंग दोर्जुने या तुम दसवें सत्य ने परवेश तुम से परम तव मत कर्म चिन्ह मत परमो मत भक्त सही वर्जित है और निर्वयी वस्त्र भूतेशु यश वामेशु पांडव। इसका मतलब यह हुआ, इसके पहला भगवान कहते हैं ना ही दे देर न तपसा न दान न तेजया सत्य जो तुम दसवांशी मांग, जिस प्रकार से तुम इसको देख चुका है, इस प्रकार का दर्शन मैं वेदों के द्वारा वेदों के अभ्यास वेदों के द्वारा नहीं दे सकता, यानी वेद के अभ्यास के द्वारा नहीं दे सकता, और मैं तब के द्वारा और मैं जग के द्वारा मैं दान के द्वारा दे सकता हूँ। तो देने का कोई रास्ता है? बोले हाँ, अनन्य भक्ति है, भक्ता तो अनन्य अशक्त है, अनंत भक्ति से देने के लिए मैं बाध्य हूँ, अनंत भक्ति से ऐसा ही दर्शन की जैसा मैं तेरे को दिया, दर्शन 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 दे सकता हूँ, सत्य से जानने में आ सकता हूँ, और मुझ में प्रवेश करना चाहे तो मुझ में प्रवेश ही वो कर सकता। वो अनंत भक्ति क्या है? उसका स्वरूप कहते हैं कि मत कर्म के में मत पारो मत भक्त संग वर्जित हो निर्वल मामी पान, राग और द्वेष को तो त्याग है, और ये तीन बातों ग्रहण करने के लिए, द्वेष त्याग करने के लिए भगवान कहते हैं क्या नाम अनंत भक्ति कहते हैं। वे पांडे जो पुरुष मत कर्म के में यानी मेरे लिए कर्म करता है, जैसे वो भी आदमी रुकने के लिए चेष्टा करता है, इसी प्रकार से थी जो मेरी प्राप्ति के लिए मेरी प्रसन्नता के लिए मेरे में प्रेम होने के लिए जो कर्म करे वो मत कर्म कर्म, और मत कर्म जो मेरी संग है मेरे पर ही निर्भर है, इस प्रकार से जो मत कर्म है, और मत भक्त है जो जिनका प्रेम मुझ में वो मेरा भक्त, और निर्भय और कहते हैं मत कर्म से मत कर्म मत भक्त सही वर्जित हो। संसार में जो आसक्ति है प्रीति है उसका अभाव यानी संसार के माँ वैराग, मेरे में राग मेरे में प्रेम और संसार के माँ सुंदर की वैराग, तो बोलो और बोलो केवल राग का अभाव नहीं द्वेष का भी अभाव, इस वास्तव निर्वय सर्वभूतेषु जो सारे भूतों के माँ द्वेष भाव से रहित है वैर भाव से रहित है वह मुझको प्राप्त है। राग द्वेष रहते हुए भगवान को प्राप्त हो जावे ये कोई संभव बात नहीं, तो भक्ति के मार्ग के बीच में भी बिना वैराग के बिना मुक्ति नहीं है, परमात्मा की प्राप्ति है, नहीं तो अनंत भक्ति हो गई, इसका नाम अनंत भक्ति है ही नहीं। तो जहाँ भगवान ने अपने भक्ति की बात कही है वहाँ यही बात कही है कि केवल मेरे में प्रेम होना चाहिए, और मेरे को छोड़कर किसी चीज में प्रेम नहीं रहना चाहिए, और भगवान में भी प्रेम भगवान में भी भक्ति और संसार में भी प्रेम वो भक्ति से व्यभिचारणी है। जैसे व्यभिचारणी स्त्री जो है उसको कोई अपने अच्छा पुरुष पसंद नहीं करता, इसी प्रकार से कि जिस भक्ति के माँ व्यभिचार देश करे वो भक्ति भक्ति नहीं, व्यभिचार देश कैसे कि भगवान में भी प्रेम और रुपये में स्त्री में संसार में भी प्रेम। तो भगवान कहते हैं मरिचानन योगे में भक्ति रहे विचार निज परमात्मा के बीच के मां समझो कि अनन्य योग से अभिविचारणी भक्ति होनी चाहिए।